संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में अर्धमान महान जिन विचरे हमारे। निकालो पेज नंबर 77 छोटी किताब में। तीसरा पैरा, इस प्रकार इन छंदों में यही कहा गया है कि सूर्यकांत मणि, स्फटिक मणि तथा पानी के प्रवाह का स्वभाव तो जो है सो ही है, किंतु सूर्य की किरणों के संग से सूर्यकांत मणि आग उगलने लगता है, डांक के संग से स्फटिक मणि अनेक रंगों रूप हो जाता है, और पत्थरों के टकराव कंकड़ संग पवन के जोर और जमीन के ढाल से लगती है, ढाल तरंगें उठने लगती हैं और भंवर पड़ने लगती है। उसी प्रकार परसंग से आत्मा में विकार होने लगता है। तात्पर्य यह है कि विकार का मूल हेतु परसंग ही है। ये किसी भी चीज के सारांश कथन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कितना सुगठित वाक्य है, एक वाक्य में पूरी टीका, उसकी गाथा, छंद, बनारसी दास के छंद, वो सब कुछ पूरा मर्म आ गया है। इतना हम पढ़ ले लो और इतना हमें याद हो जाए तो समझ लोगे पूरे 3-4 दिन के जो व्याख्यान हुए हैं वो सब उसमें आ जाते हैं एक वाक्य में। कौन सी चीज छूटी, घर पर जाकर विचार करना। और इस वाक्य को और अधिक संक्षिप्त बनाया जा सकता है कि कोई विधि आपके पास हो तो बनाना वाक्य, फिर मुझे दिखाना, है ना। और इसमें रंग स्पष्टता, क्योंकि तीनों उदाहरण आ गए, सूर्यकांत मणि और वो स्फटिक मणि और नदी का प्रवाह, और उसकी जो अवस्था है वो आग उगलने लगता है, वो अपनी डांग लगने से रंग हो जाता है, और पानी के प्रवाह में पत्थरों के संयोग से, कंकड़ों से, हवा के प्रवाह से, देखो जो जो उस पानी के प्रवाह में स्थितियां बनती हैं वो भी सब इसमें आ गई है। जमीन के ढाल से जो कल अपने छंद पड़ा था ना, जिस पर आप इतने अधिक दिन हे थे, सभी छंद ऐसे हैं, उनकी गहराई में जाकर देखें कि जिस हिसाब से उन्होंने लिखे हैं, जो बनारसी दास के छंदों का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, मैंने बहुत गहराई से उनका अध्ययन किया है, लेकिन जो वो बात है वो बात मैं भी बार बार आप लोगों को कहता हूं कि वे कलश टीकाकार पंचाध्यायी से बंधे हैं, और उससे जो जो तकलीफें होती हैं, तकलीफ हैं आनुवंशिक से, कुछ बीमारियां आती हैं ना, आपकी डायबिटीज बेटों को आ जाती है, तो वो पांडे राजमल जी की डायबिटीज बनारसी दास जी को भी आ गई है। अब बस इतने में जिसको जो समझना हो वो समझ, मेरी बात को नहीं भी मानेगा तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा, और नहीं करेगा तो जहां भटकना होगा भटकेगा। जे बड़े पंडित हैं कि बे बड़े पंडित हैं, किनकी माने, इनकी माने कि उनकी माने, किसी की मत मानना, अपनी मानना, है ना। क्यों, तेरे में तो बुद्धि है ना, सैनी है, पंचेंद्री है, थोड़ी विषय कसाय इसमें लगा, सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री का भी मैं पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि आप ये मत समझना कि मैं ऐसा मानता हूं और आके गुरुदेव श्री की समझ में ये बातें नहीं आई होंगी क्योंकि वे कम पढ़े लिखे थे, पूरी तरह उनके दिमाग में स्पष्ट थी सब बातें। मैं ये देख देख के ही गुरुदेव पर रींझता हूं क्या, ये प्रॉब्लम वाली बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनकी जो इतनी गहराई से तत्व की पकड़ है उसकी मुझे बहुत बहुत ज्यादा, मैं उसकी वजह से उनका मन में दबा। देखो यहां श्रीकांत मणि का दृष्टांत देकर आत्मा के विकारी प्रणमन की प्रक्रिया को समझें। कहते हैं कि जिस तरह सूर्य का ने आप अग्नि रूप नहीं प्रणमता, बल्कि अग्नि रूप प्रणमन में सभी यद्यपि सूर्य के कारण भी सूर्यकांत मणि में अग्नि नहीं होती, तथापि सूर्यकांत मणि को अग्नि रूप होने में निमित्त अवश्य है, ऐसा ही दोनों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी बहुत स्पष्ट है जी, है ना, यदि सूर्य को अग्नि का उत्पादक माने, साधारण पत्थर में भी सूर्य से अग्नि का उत्पन्न हो जाना चाहिए, है ना, और सूर्य के बिना ही सूर्यकांत मणि में अग्नि का उत्पाद माने तो रात्रि के काल में जब सूर्य नहीं होगा तब भी सूर्यकांत मणि में अग्नि उत्पन्न होते रहना चाहिए, पर ऐसा कभी नहीं होता। ये तर्क युक्ति बराबर गुरुदेव के ख्याल में आई है, अतः स्पष्ट है कि सूर्यकांत मणि में सूर्य की निमित्तता के बिना अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती। जो जिन लोगों की ऐसी धारणा है कि गुरुदेव निमित्त को नहीं मानते हैं उन्हें ये पंक्तियां पढ़नी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सूर्यकांत मणि का अग्नि रूप मणि जो अग्नि रूप होता है वह अपनी उस समय की पर्याय की योग्यता से होता है, और सूर्य बिंब उसमें निमित्त मात्र है, सूर्य का बिंब उसमें कुछ नहीं करता। देखो ठीक इसी प्रकार आत्मा स्वयं अपने आप कभी विकारी नहीं होता, विकार का निमित्त भी नहीं बनता, जब वो विकार का निमित्त भी नहीं बनता और स्वयं भी विकारी नहीं होता, माने उपादान से और निमित्त से दोनों से। आत्मा तो त्रिकाल चिद्रूप स्वरूप एक शुद्ध ही है, वह स्वयं अकेला विकार रूप कैसे हो, क्यों हो। आत्मा की वर्तमान पर्याय में जो विकार पुण्य पाप के भाव, दया दान भक्ति आदि के स्वभाव, क्या लिखा है, ये क्या है, वर्तमान पर्याय में जो विकार, आप समझे ना, विकार होते हैं, ये वाक्य पढ़ो समझो, थोड़ा हिंदी समझ नहीं हो तो, मैंने कुछ छोड़ दिया, उन देखो क्या फिर पढ़ता हूं, आत्मा की वर्तमान पर्याय में जो विकार होते हैं उनका निमित्त कारण भगवान आत्मा स्वयं नहीं है। आया मैंने मिल गया कि नहीं मिला, ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं कि बीच में जो भी भर्ती की है ना वो तो विकार का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए की है, आई ना। अब विकार का स्वरूप क्या है, पुण्य पाप के भाव, दयादान भक्ति आदि के भाव, शुभ भाव और हिंसा झूठ चोरी आदि के पाप भाव, ये अशुभ भाव, ये इतना है, ये काय का विकार का अर्थ है, समझा, और होते हैं। ये बात मैं ये बता रहा हूं, ये पूज्य गुरुदेव श्री का कथन है, तुम भाषा के बहुत बड़े पंडित हो ना, देखो इसे हमने इसे संपादित किया है, ये बात सही है, लेकिन पलटा पलटी ज्यादा नहीं की है क्या, मैंने भाषा के गठन का स्वरूप ख्याल में आया ना, कि हम विकार होते हैं वर्तमान पर्याय में जो विकार होते हैं उनमें भगवान आत्मा निमित्त कारण नहीं है, ये बताना है। अब बीच में आ गया कि बेकार का अर्थ क्या, तो तुम समझोगे कि बस गुस्सा गुस्सा आता है, बेकार है, तो ये बताते हैं शुभ शुभ भाव, इतना ही कह देते लेकिन तुम नहीं मानते, समझ में नहीं आते विश्वासों में को मन में तुमने उन्हें जीव दया के परिणाम, भक्ति के परिणाम, भाव के भगवान, ये सब सांस लिखने के परिणाम, ये सब कहते हैं। देखो उनका निमित्त कारण भगवान आत्मा स्वयं नहीं है, उसमें तो प्रसंग ही निमित्त है। अब समझते जाना एक एक शब्द। जब कर्मों का संग करता है, जब आत्मा कर्मों का संग करता है तो पर्याय में विकार होता है। विकार होने में भगवान आत्मा निमित्त नहीं है, पर प्रसंग अर्थात जड़ कर्मों का उदय निमित्त होता है। देखो और रही सही कसर देख लो। प्रसंग का अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि कर्म विकार कराता है। हां अपने तत्समय की योग्यता से आत्मा में जब जैसा विकार होता है तब तदनुकूल प्रसंग निमित्त रूप होता अवश्य है। अब और देखो प्रसंग एव है, ऐसा जो कहा है उसका अर्थ यह नहीं है कि पर वस्तु जबरन राग कराती है। वस्तुतः बात यह है कि जब जीव स्वयं अपनी उपादानगत तत्समय की योग्यता से प्रसंग करता है तब विकार होता है, स्वभाव के आश्रय से विकार नहीं होता। आया ना ख्याल में कितनी कितनी बैलेंस बात है। अब ये मैंने लिखा है थोड़ा सा इस प्रकार। इस कलश में यही कहा गया है कि रागादि रूप प्रणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, अपितु प्रसंग से उपजा विभाव है, विभाव भाव है। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि पर ने कुछ नहीं कराया है, तथापि यह भी सत्य ही है कि इस विकार का मूल हेतु प्रसंग है, स्वयं कृत प्रसंग ही है। बहुत बहुत ताकत है इस भाषा में, है ना? स्वयं कृत प्रसंग है माने प्रसंग कर्म मन ने कुछ नहीं कराया, वे संगति में आगे पड़ गए हैं, तूने ही उसका संग किया है। स्वयं कृत प्रसंग ही है। ऐसे ही एक गाथा कथा क्या छंद प्रसाद सिद्धि उपाय में आता है और वो गुरुदेव को इतना अधिक प्रसंग था कि उसको नाटक समय साहब वगैरह छपे ना एक आध पेज बता रहता है ना, उसमें उन्होंने बाउंड्री बना बना करके समय साहब ने सब में दिया था। उसमें भी ऐसे ही प्रसंग एव होगा क्यों नहीं, हमें तंदई तो वो एक ही है ना जो इसमें जो कलश लिखने वाले और वही प्रसाद सिद्धि उपाय लिखने वाले। तस्मिन निमित्तम प्रसंग एव पर तो कहते पर की संगति कहना क्या चाहते हो, कहते ये प्रसंग वो पर ने कराया है क्या, ये प्रसंग तूने किया है और तेरे स्वभाव ने नहीं किया, ये तेरे वर्तमान पर्यायगत योग्यता से मैंने उपादान से क्षणिक उपादान नंबर दो से उस समय तेरी पर्याय में जो विकार हुआ उसने ये प्रसंग किया है, प्रसंग किया ये प्रसंग बनाया है। मतलब त्रिकाली जो भगवान आत्मा भी निमित्त नहीं है और पर निमित्त मात्र है लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया है। मैंने वो यहां पे एक फोटो टंगी थी ना कल परसों टांगी थी अपन ने, कौन सी वो नाचती हुई महिला की नहीं दिख रही, कैसे लोग हैं वो फोटो ने कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे लिए, वो तो अचेतन है जड़ है। ऐसे जिन जिन का हम आरोप लगाते हैं वे द्रव कर्म भी जड़ है, उदय रूप निमित्त भी जड़ है। देखो आश्रय भूत निमित्त भी जड़ है, अब देवजसी उनको कर्ता बना रहा है ना? उस परसंग तो तूने किया है। मैंने इसके लिए कहा था कि ये फोटो यहां आई कैसे, अपने यहां दौड़ के तो आई नहीं थी, तूने आगे लगाई है ना। ये घर में वो गंदे गंदे क्या मिल जाते ना, कहां भेड़ा घाट में और जैसे जाओ नहीं कहीं जाओ तो वो नंगी नंगी दिगंबराओं की मूर्ति बना बना करके रखते हैं, और ये करोड़पति अरबपति सेठिया मैंने नया बंगला बनाया है ना, तो उसकी बैठक में रखने के लिए चाहिए ना, तो मैंने कहा ले जाओ ना भगवान की मूर्ति। नहीं नहीं उसका अपमान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसी ना किसी बहाने से वो उनकी छुट्टी करते, घर में नहीं लगाना चाहिए, जैन कैलेंडर भगवान महावीर का कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, आचार्यों का भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा उनका अभिनय हो जाता है, वो अभिनय के बहाने से उनकी छुट्टी करता है। और अपनी रुचि के पोषण के लिए ऐसी ऐसी गंदी चीजें लाके रखता है, ऐसा लगता है कि घर पे खाना कैसे खाएं। ये आंदोलन हमारे सुमित जी चला दें कि जिसके घर में ऐसी रखी हो उसके यहां भोजन करना बंद कर दें, तो ये कम हो सकती है कुछ। मेरे बस की तो नहीं है।
देखो अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब आचार्य देव अमृतचंद्र देव आगामी कलश में इस प्रकार के वस्तु स्वरूप से परिचित ज्ञानी जीव रागादि भावों में एकत्र बुद्धि नहीं करते, यह कलश आगामी गाथा की उत्थान का काम भी करता है। ये बात ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करते और अज्ञानी जीव ऐसा करते हैं, ये दो कलश हैं, बीच में ये गाथा फंस गई, नहीं तो मैं दोनों को एक साथ ही छाप देता, जैसे एक गाथा एक सी आती है ना, तो मैं उन्हें एक साथ कर देता हूं, लेकिन बीच में ये गाथा फंसी तो अलग अलग लिखने पड़े। इति वस्तु स्वभावम स्वम
जानी जानाति तेन कः अपना पन ना राग में अतः अकारक जीव।
अब 177वां भी पढ़ लो साथ में।
इति वस्तु स्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन स रागादीनात्मना कुर्यात् अतो भवति कारकः। वस्तु स्वभाव को ना जाने अल्प धरे एक ताराग में नहीं अकारक।
बिल्कुल बस पलट दिया और कुछ नहीं है, है ना, है ना, संक्षेप में है ना। जब कहते हैं इति वस्तु स्वभावम स्वम ज्ञानी जानाति तेन सा, ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु के स्वभाव को जानता है, अपने में स्वम माने अपनी वस्तु माने अपने भगवान आत्मा का स्वभाव कैसा है कि वो पर में राग आदि में निवृत्त नहीं बनता है, ख्याल में आई ना, पर तो बनता ही नहीं है, ऐसे अपने स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादिक का अकर्ता है, आत्मा रागादिक भावों का अकर्ता रहता है ना। और अज्ञानी है, दूसरा संदेह से समझ लो कि वो राग उसको वो जानता है, ऐसा वस्तु स्वभाव को वो अज्ञानी नहीं जानता है, इसलिए वो रागादिक का कर्ता बनता है। देखो अब स्वामी जी को पढ़ते हैं इसमें भी, ज्ञानी अपने वस्तु स्वभाव को अकेले ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को पूर्ण आनंदामृत से भरे तत्व को जानता है, इस कारण वह रागादि को अपना नहीं करता, अपना नहीं करता माने अपना नहीं मानता, उनमें आत्मबुद्धि नहीं करता, भले ही वे रागादि भाव वर्तमान दशा में पर लक्ष्य से आत्मा में हुए हों हो रहे हों, परंतु उनमें ज्ञानी का अपना धर्यथ पर से पर्याय बुद्धि टूट गई, अतः अंतर में स्वभाव दृष्टि प्रकट हो गई है। पर के राय में जो रागादि होते हैं उन्हें वह अपने नहीं मानता। जिन्होंने अपने वस्तु स्वरूप को जान लिया है वे धर्मी पुरुष रागादि के कर्ता नहीं है, अकर्ता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा ही है। यद्यपि वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण रागादिक भाव होते हैं पर वे उनके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, उनके कर्ता नहीं होते। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी जीव रागादि विकारी भावों में अपनापन स्थापित नहीं करते, उन्हें अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते, इस कारण वे रागादि के कर्ता भोक्ता नहीं होते। ये समय सार की दृष्टि है। प्रतन सार की दृष्टि तो ये है कि वो रागादिक रूप में परिणमित होते हैं, इसलिए आत्मा उनका करता है, वो ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि ये बात अकेले प्रतन सार में हो। समय सार में मूलतः अमृतन का कलश आया है, यह परिणमति सा करता आया कि जो परिणमित होता है वो करता है, और वहां राग कई करते से मतलब है। समृद्ध शिखर में सर्वत्र चलता था, पर ये बात मैं इसी को समझा रहा था तो बहुत जबरदस्त विरोध का स्वर दिखाई दिया। और ये कहकर के दिखाई दिया कि ये तो प्रोत्साहन की बात है, बहुत बड़े विद्वान है क्या। मैंने कहा कि हो सकता है प्रचन सार की ही बात हो, लेकिन महाभाग्य से प्रचन सार भी उन्हीं कुंद कुंद ने लिखा है, वो उनकी टीका भी उन्हीं अमृतचंद्र ने लिखी है, और गुरुदेव सिंह ने भी उस पर व्याख्यान किए हैं। तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं जैसे वो प्रचन सार वहां हे तत्व हो, और प्रचन सार की बात मानने वाले को सीधे साथ में नरक में जाना पड़ेगा। ये प्रयोजन सार है ऐसा कहकर के उसके साथ ऐसी बात क्यों कहते हैं। लेकिन प्रयोजन सार की है मैं इसलिए जो आप जिस लोगों के दिमाग में जमी हो कि प्रयोजन सार तो दो नंबर का शास्त्र है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि समय सार में भी ये लिखा है कि यह परिणमति सा करता, और ये तो रागादिक का कर्ता लिखा है। शांति जी समय सार की मूल गाथाएं हैं जिसमें लिखा कि व्यवहार नए से ये भगवान आत्मा घटपट और रथादिक का करता है। घटपट और रथ बस तीन ही आचार को उदाहरण आते थे और बस खत्म। क्या क्या ये खटपट क्यों, ये क्या खटपट करते रहते हैं आचार्य, ये खटपट नहीं घटपट है। घट माने घड़ा और पट माने कपड़ा और रथ माने गाड़ी, गाड़ी से ना बैलगाड़ी पत्ती। तो घट का करता कुमार, पट का करता कोरी, मैं जुलाहा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वो उर्दू का शब्द है क्या, और रथ का करता बढ़ई। अब तीन ही उसने देखे थे मैं वैचारिकों क्या है? वे आहार को आते थे तो वे मिट्टी के घड़े घर में रखे देखते थे और लोगों को कपड़ा पहने देखते थे, पहना तो उन्हें था नहीं, तो घटपट हो गया। और कभी बैलगाड़ी को चलती देख लेते थे रास्ते में, इंद्रिया समझ पूर्वक जाते थे ना, छोटे छोटे रास्ते थे तो उनको बगल में जरा बैलगाड़ी को आती होगी तो खड़ा होना पड़ता होगा, तो जगत में तीन ही पदार्थ है उन्हें वैसे दिखता था। और आजकल हम तो बहुत विशेषज्ञ हो गए हैं, सारा विश्व का जानते हैं, इंटरनेट और इंटरनेट से क्या क्या जानते हैं, कहां कहां तक की क्या क्या बातें जानते हैं, क्यों विनोद है ना, हम बहुत आगे हो गए आचार्य में। हाँ क्या बात चल रही है अपनी, गुरुदेव का पढ़ना, हाँ गाथा पढ़ना है ना,
जो बात विगत कलश में कही गई है उसी गाथा में भी कहते हैं। देखो बहुत सरल बातें थी और पिछले में खूब मंथन अपन कर चुके हैं चार दिन पांच दिन से, इसलिए मैंने बहुत सहजता से पढ़ करके आपको, और मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ मुझे दौड़ के भाग के कहीं नहीं जाना है, वो उसमें अब कुछ ऐसा बताने के लिए विशेष माल रहा नहीं है, इसलिए मैंने वो पढ़ के शांति से पार किया है। चलो पढ़ो गाथा।
नय राग दोष मोहम भूवदिनाणी कसाय भावं बा स्वयमप्पणो न सोते न कारगोते सिणम न स्वयं करिता मोह एवं राग द्वेष कसाय को, इसलिए ज्ञानी जीव करता नहीं है राग आदि का।
देखो ना स्वयं करता मोह, मोह का करता नहीं है माने दर्शन मोह का करता नहीं है, और राग देश कसाय को, और राग देश रूप कसाय का करता नहीं है। ऊपर ऐसा लगता है राग देश मोह का करता नहीं है और कसाय का करता नहीं, गाथा में ऐसा लगता है। तो पढ़ो गाथा। न राग देश मोहम कुब्बती राणी और कसाय भावम बा, और बा माने अथवा होता है, अथवा कसाय भाव को नहीं करता है, लगता है ना, तो इसमें अथवा है, ऐसा नहीं है। वो अथवा तो है, वो राग देश के लिए अथवा है, मोह राग देश के लिए नहीं। रमेश जी समझ में आया क्या कहा मैंने? क्योंकि मोह माने तो मिथ्यात्व होता है, और राग देश में 25 कसाएं आ जाती हैं। इन गाथाओं की टीका में जयसेनाचार्य ने प्रश्नोत्तर करके ये बात को खोला है आगे चल करके, कि भाई राग देश में कसाएं कैसे आ जाती हैं, और राग में कौन कौन कसाएं आती हैं, और देश में कौन कौन आती हैं, अपन ने 20 दफे बता दी हैं और आप सब लोगों को पता है, इसलिए। लेकिन जयसेनाचार्य ने इस गाथा की टीका में इस बात को खोला है तो ये बताना बाकी है। देखो आत्मख्याति पढ़ो। यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी स्वयं के शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, इस कारण वह मोह राग देश भावों रूप स्वयं परिणमित नहीं होता और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। यही कारण है कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप ज्ञानी राजमोह आदि भावों का अकर्ता है, ऐसा नियम है। देखो ये बात आप समझ लो, बहुत मार्मिक वो शिखर जी में भी हुई थी उस समय, लेकिन अब कौन कौन शिखर जी में होगा किसको याद है कि ज्ञान ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं है, ये जो कहा जाता है ना, तो रागादि में मिथ्यात्व भी आता है, चाहे वो मोह राग देश कहें, चाहे अगले रागादि कहें, चाहे मोहादि कहें, चाहे द्वेषादि कहें, तीनों का अर्थ है मोह राग देश। तो अब ये कहते हैं कि ज्ञानी मोह राग देश का कर्ता नहीं है, और फिर वहीं ये कहें कि जो जिस रूप परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है, ये निश्चय है। तो निश्चय से कर्ता नहीं है क्या? मतलब वो निश्चय से तो कर्ता हो गया। अब ये समझ लेना बहुत मार्मिक बात है, ये समझ लोगे तो कहीं तुमको रुकावट नहीं आएगी, दौड़ते हुए चले जाओगे। वो कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि ज्ञानी मोह राग देश का कर्ता नहीं है, तब मोह माने मिथ्यात्व और राग देश माने अनंतानुबंधी संबंधी राग देश, ऐसा अर्थ होता है। समझ ली? अब तो कोई झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि बेज्ञानी के हैं ही नहीं, अब उनके कर्ता होने का क्या सवाल है? जो नहीं है उनके कर्ता नहीं होने में क्या दम है? तो मोहतात्व तो नहीं है ना गारंटी से, ये राग देश तो है अप्रत्याख्यान संबंधी सही, प्रत्याख्यान संबंधी सही, संतुलन संबंधी सही, लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं है ना, तो उसका भी कर्ता नहीं है ये कह रहा है ना,
तो उसी न्याय से अनंतानंद निरागदेश का कर्ता नहीं है, ये तर्क ख्याल में आ गया ना भाई जी। तो ये बिल्कुल सीधा सच्चा है कि जो मोह राग द्वेष उसके नहीं है उनका कर्ता कह रहे नहीं है ऐसा कह रहे, इसमें ना समझ में आने की क्या बात है, क्या कि हम में वे राग द्वेष है ही नहीं तो हम उनके कर्ता नहीं है। झगड़ा तो वहां खड़ा होता है कि राग द्वेष हो और वो कर्ता नहीं हो, तो हम राग द्वेष को पकड़ लेते हैं अप्रत्यक्ष अनावरण संबंधी, और कर्ता नहीं पकड़ लेते हैं समय सार का। क्यों फिर ऐसा क्यों है देखो संजीव, इसलिए है कि वो समय सार कहता है हम अप्रत्याखाना प्रत्याखाना संजन को राग को हम राग ही नहीं मानते, हमारे यहां उसकी कोई गिनती फिनती ही नहीं है। क्या क्या है अनंतमा भाग अपने आप खत्म हो जाने वाला समय पर, एक दफे श्रद्धा ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी कोई समस्या ही नहीं है वो, क्या कह रहे हैं किसी अनुव्रत नहीं लेते थे महाव्रत नहीं लेते, आपको इसकी फिक्र ही नहीं है कि हमारी भाई कोई ये समस्या ही नहीं है। हमारे पास समस्या तो ये है कि ये मिथ्यात्व नहीं छोड़ते, एक दफे मिथ्यात्व छोड़ देंगे सम्मत दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो सो समय में ये तो छोड़ ही देंगे, ये तो नक्की है पक्की है, और उसकी मर्यादा शास्त्र में बताई है कि कम से कम इतने समय में अधिक से अधिक इतने समय में, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं, तो थोड़ा समय तो कम हो जाएगा ना कमल जी, हम समझाएंगे तो थोड़ा समय तो कम हो जाएगा ना क्या, अब मर्यादा तो अंतर्मूर्त है ये तो ठीक ठाक है, तो अब वो तो अर्धबुद्ध कल परावर्तन हो, वो तो मिथ्यात्व में चला जाए तो है, और न जाए तो भी क्यों, वो भी हजारों हजारों वर्ष की मर्यादा है, क्यों बनो दे ना कैसे देखो, सम्मत दर्शन तो 8 वर्ष की उम्र में हो जाता है, और दीक्षा 1 करोड़ पूर्व की आयु हो और दीक्षा हो अंतिम अंतिम मुहूर्त में, कितने 1 करोड़ से कितना एक कितना हो गया 1 कोटि पूर्व तो यही हो गए, और सर्वासिद्धि भी गिन लो उसके पहले हुआ हो तो 33 सागर और जोड़ दो तो उसके भावलिंगी संत थे, अरे कितना लंबा पीरियड हो सकता है, तो इतना लंबा है तो हम थोड़ा समझा समझू करके उसे तो कम कर सकते हैं ना, जल्दी दीक्षा ले ले, तो हमारे उपदेश को तुम निरर्थक क्यों कहते हो और आवश्यकता नहीं है ये क्यों कहते हो। अरे भाई उसमें भी प्रत्येक का स्वसमय नक्की है और सबके मिलके भी कुछ नक्की है, वो कुछ क्या है कि 6 और 8 समय में 6 से 8 ही जीव मुक जाएंगे ज्यादा नहीं, अब हम उनको कैसे तोड़े, तुम्हारा तो अपने सुख मर्यादाओं को तोड़ने का है, असली बात तो ये है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं हमें तो विकल्प ही नहीं आता समझाने का, क्यों कि हम सामने वाले को त्रिकाली ध्रुव देखते हैं तो वो समझ का पिंड है उसे क्या समझाएं, अब वर्तमान की दुर्दशा देखते हैं तो कहते ऐसे मूर्खों को क्या समझाएं। के सामने देखते हैं तो पुद्गल है ऐसा लिखा, ये जड़ है, जड़ा का मतलब मूर्ख भी होता है और जड़ का मतलब पुद्गल भी होता है, इसलिए कह रहा हूं समझ गए। एक बात और बता दूं साथ में, देशना लब्धि सम्यक दर्शन के पहले होती है, गुरु की जरूरत देशना लब्धि माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले है, उसके बाद नहीं है जरूरत। दीक्षा कैसे लेंगे, हमसे दीक्षा तो लगी नहीं है, तुम दिगंबर कैसे हो गए, अरे तुम तो दिगंबर कह रहे, दिगंबर धर्म में आना, हम तो दिगंबर मुनि भी हो जाएंगे और तुमसे किसी से दीक्षा नहीं लेंगे, ऐसा विधान है ना शास्त्र में, क्यों कि भगवान की मूर्ति के सामने ले लेंगे, अरे मूर्ति नहीं होगी तो अपने दिमाग में मूर्ति बना लेंगे और हो जाएगा, उसके सामने दीक्षा ले लेंगे,
क्या नहीं है जरूरत? चारित्र में गुरु की जरूरत नहीं है, क्यों? समझ में तो वहां कुछ है नहीं, संबोधन होते ही समझ में तो सब कुछ आ गया। अरे बोलो, जब गुरु समझाता है सम्मत दर्शन के पहले त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा, तो बाकायदे प्रेम से समझाता है, उदाहरण से, तर्क से, युक्ति से, आगम में भी लिखा होता है, सब होता है ना पूरा। अब 6 महीने का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है, ये समझने समझाने का तो बहुत है ना। और सम्यकता है तुमने क्या? हमने गुरुदेव से दीक्षा ले ली। क्या दिया तुम्हें गुरुदेव ने? और तुमने क्या ली? क्या लिया? क्या दिया? उनने कह दी हमने दई, और तुमने कह दी हमने ली। हमें तो कुछ देते लेते दिखे नहीं। समय दृष्टि दीक्षा लेते हैं तो जो भी वो समझा रहे वो सब औपचारिक है, वो सब समझते हैं। और समय दृष्टि दीक्षा देते हैं और बाद में क्या करना है? अब कर्ण जी ने बहुत लंबा शास्त्र खड़ा कर दिया, और निर्याप काचारी और फलाना और भाज भोजन करके आए, तो रोजीना बताएं कि हमने क्या गलती की। अब वो बड़ा लंबा चौड़ा है, वैसा दिखता है, उसके बाद भी बहुत काम है, लेकिन वो तो काम नाकाम का काम है। वो तो होता है ऐसा काम है, क्यों समझ नहीं ना? वो तो समझ तो समझाना क्या है, वो समझ में तो उसको पहले ही आ गई, घबराना नहीं। क्या आ गई? कि मैंने गलती की है, और उसने खुद ही जाके महाराज को बताई है। क्यों? तो मैंने गलती की है, इसका प्रायश्चित लेना चाहिए, ये तो समझ में तो आ ही गई ना। और वो भी सब जानते हैं कि इसका क्या प्रायश्चित लेना चाहिए। दिन रात देखते हैं ना, कल गलती भेज दी तो महाराज ने ये दंड दिया था, उनसे भेज दी तो ये हुआ था, ये हुआ था, वो सब शास्त्रों में भी लिखी है, वे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन वो तो गुरु गुरु की तो एक साक्षी है। मैं जानता हूं कि आलू में अनंत जीव है, मुझे नहीं खाना चाहिए, फिर मैं कहता हूं आप छुड़ा दो सुमित जी। तो मैं क्या छुड़ाए हम? तुम नक्की करके तो आए गए ना, ये छोड़ने लायक है। क्यों? कहता भैया हम छुड़ा रहे, तू छोड़ दे। कहा था हमने छोड़ दे। तो वो तो निर्णय तो सब उसने कर लिया, वो हाथ जोड़ के आए कि महाराज मुझे दीक्षा दे दो। मेरा मतलब समझ आई ना? तो दीक्षा के लिए भी हमने क्या समझाया है, ये समझा समझू के क्या होना है, तो सब औपचारिकता है। अभी वो तर्क लगाएंगे, अभी जो अपन कितने दिनों से लगाते आ रहे हैं कि हजारों के बिना उसके भी पूर्ण चारित्र होता देखा गया है, पर केवल ज्ञान होता देखा गया है। तो यदि वो अनिवार्य शर्त होती तो किसी के नहीं होता, लेकिन ये त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप समझे बिना क्यों? ये संभव नहीं है, और इसका राजमार्ग तो शास्त्र पढ़कर गुरु से समझ करके ही है। और वो जो राजमार्ग के अलावा जो मार्ग खुला है, वो भी एक शर्त है, पूरब ब्रह्म में कभी मिल गया हो और वो जातुस्मरण हो जाए, बहुत रेयर है। आखिरकार अंत में कहीं से मिला तो है ना, तो मिलना तो अनिवार्य रह ही गया, भले ही तुमने निसर्ग नाम का बना लिया। ये अनिवार्य है, क्या ध्यान नहीं देते हैं? और तूने बड़ा खड़ा कर दिया रूप, गुड़ी पड़ो बहुत मारने के ऊपर। जब भी तो मैं बोल रहा हूं वही है, बहुत कि ज्ञानी रागादि भावों का कर्ता नहीं है। इसका अर्थ कर रहा था मैं कि किन के हैं? और जो अनंत अप्रत्याख्यान वर्ण रागादि हैं, तो उनमें तो यह परिणमति सा कर्ता वो न लगेगा, तो वो उनका है तो साहब है तो हो गए। अरे यहां तो वो लगता ही नहीं है, वो तो समय साहब तो कहते हैं हम तो उसे लगाते ही नहीं है। हम तो कहते 99% नहीं, तो कर्जा चुक गया, तो एक रुपया तो बचा, एक रुपया करना नहीं हो, कहता एक रुपया बचा, एक रुपया तो ले देना, ले दे लेना, कोई बात नहीं है। क्यों? अब हमारे यहां से तुम्हारे खाते में कर, तुम हमारे कर्जदार हो, ही नहीं बट गया। तो दुर्ज्ञान योग के हिसाब से तो वो है ही नहीं,
तो किसका करता हो? और जब तरुणानियों के हिसाब से विचार करते हैं वस्तु स्वरूप प्रवचनसार सूक्ष्म कथन किसमें, समय सार में या प्रवचन सार में? क्योंकि वो एक एक पाव रत्ती की बात करता है। यहां तो अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजीवन को आगे ही नहीं है। बोलो कितना मोटा हिसाब किताब है, है? अध्यात्म तो अत्यंत स्थूल ग्रंथ है, स्थूल है, और इसीलिए वो सबके लिए अनिवार्य है, पहली दूसरी चौथी क्लास को भी धर्म में। पर वो सूक्ष्म तो बहुत चीजें हैं जो विशेषज्ञों के लिए जरूरी है। ख्याल में आ जाए तो वो राग, जो राग वो बचा है तो कहते उसमें वो प्रशंसा लगेगा, वो नए लगेंगे या प्रणमति सा करता। और यहां तो वो स्वीकार ही नहीं करते। अब इसकी इसकी बात करते हैं, देखो किंतु टीका में यह भी कह दिया है कि ज्ञानी जीव ना तो स्वयं रागादि भाव रूप प्रणमित होते हैं, होता है, और न दूसरों के द्वारा भी रागादि रूप प्रणमित किया जाता है। अब वो तो है ही नहीं, उनके तो क्या करना है, और बाकी के हैं मुझे हम राग मानते ही नहीं, ज्ञानी जी पढ़ने में दूसरे कर सकते हैं उसे। इस प्रकार ज्ञानी किसी भी प्रकार से रागादि भाव रूप परिणमित नहीं होता, इस कारण वह रागादि का करता है। इस बात को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो इसमें दो बोल आए हैं, दो बोल आए हैं गुरुदेव माने, दो बोल माने दो तथ्य स्पष्ट किए गए हैं, हुए हैं। माने वे तेरा चेंज को वो बोल बोलते गुरुदेव ने, टोलामल जी का बहुरी और गुरुदेव के बोल पॉइंट, मतलब धर्मी जीव स्वयं तो राग देश मोह आदि भाव रूप परिणमित होता ही नहीं, और कर्म आदि पर से भी वह राग आदि रूप परिणमित नहीं होता। ये दो बातें आ गई, न कर्म ने परिणमाया और न वो खुद हुआ, न खुद है उसका कर्ता और न कर्म है उसका कर्ता। तब कौन होगा, बीच में कौन आ गया? ये देख कहते कोई करता नहीं और वो हो रहा है, और कर्ता के बिना कार्य होता नहीं है। अकर्तत्वाद है ना, कार्यत्वाद हेतु दिया ना, तो दुनिया में जो कार्य है वो नियम से किसी न किसी के द्वारा किया गया तो होगा ही। तो जिसने आत्मा के शुद्ध वितराग स्वभाव को जान लिया है एवं अनुभव कर लिया है, उसकी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पर निरंतर रहने से उसके ज्ञानमय प्रणमन ही है। वह राग देश मोह आदि भाव से कैसे प्रणम सकता है, तथा जो स्वयं विकार रूप न प्रणम है उसको कर्म आदि पर पदार्थ विकार रूप कैसे प्रणमा सकते हैं? दूसरा प्रणमाता है यह तो निमित्त का कथन मात्र है, तो ना दूसरा प्रणमा सकता है ना खुद प्रणमा है। और अब वही बात फिर आ गई, आदमी को दया दान पुण्य पाप के भाव आते तो हैं। अब आगे पुण्य के साथ पाप के भी लगाए हैं, भूमिका अनुसार आते हैं। देखो पर वह उनका कर्ता नहीं है, वह तो एक ज्ञानमय भाव का ही कर्ता है, पर रागादि भावों का अकर्ता ही है। जो वे आते हैं और उनका अकर्ता है, जो आते हैं उनकी अकर्ता कह रहे हैं। कौन आएंगे भी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी ही होंगे ना, उनके राग करने का अभिप्राय नहीं है। निर्मल ज्ञान भाव का करने वाला ज्ञानी मलिन रागादि को कैसे करे? क्योंकि अज्ञानी उक्त परम सत्र को नहीं जानता, इस कारण वह रागादि भावों का कर्ता होता है। अब इस भाव का पोषक आगामी गाथा का सूचक कलश काव्य कहते हैं, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है ना। अब इसका इसमें भी गुरुदेव का कथन पढ़ लेते हैं। अज्ञानी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान व आनंद के रसकंद शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को नहीं जानता, वस्तु के स्वभाव पर उसकी दृष्टि नहीं है, उसका ज्ञानोपयोग स्वरूप सन्मुख नहीं है, वह बाहर में निमित्त के या पुण्य पाप के भावों के सन्मुख हो रहा है, इस कारण वह निरंतर रागादि भावों से परिणमित होता हुआ कर्ता बनता है, जो कि अज्ञान भाव है। अज्ञानी के वो है, उनका नाम अज्ञान भाव है, वो उनका कर्ता है। ज्ञानी के लिए नहीं है इसलिए वो कर्ता नहीं है। यदि ये बात हमारे ध्यान में रहे तो हमें इसमें कोई दोष ही नहीं दिखाई देगा, और हम कहेंगे नहीं नहीं है तो, और वो अज्ञानी उसका कर्ता और ज्ञानी कर्ता नहीं, ये तो बहुत पक्षपात है, ऐसा लगता है ना। कभी ये ज्ञानी को तो कर्ता कह रहे हैं, अज्ञानी को कर्ता नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्या है? हाँ, अज्ञानी को भी कौन से राग भाव का कर्ता कह रहे पंडित? वही मिथ्यात्व और अनंतानबंदी वाले का, क्योंकि वे बाकी का जो अप्रत्याख्यान संबंधी राग है उसको तो वो गिनते ही नहीं है। और चारित्र में भी नहीं होता ऐसा, संतुलन का पूरा राग पड़ा रहता है, और छठ में गुणस्थान में तीव्र उदय होता है, और फिर भी मुनि राग को हम बीतरागी संत कहते रहते हैं। तो तुम संतुलन का शायद कोई उपेक्षा कर सकते हो, तो कोई अप्रत्याख्याना वर्ण की उपेक्षा कर सकता है, कोई प्रत्याख्याना वर्ण की भी उपेक्षा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? जिस नए से है ना, उसी ने भी कुंद कुंदाचार्य देव परम बीतरागी संत कहते रहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, पहले पूछा है मैंने, लेकिन अब और रविन्द्र पूछ लेता हूं। ये जो शास्त्र लिखा कुंद कुंदाचार्य देव ने, समय सार वो प्रवचन सार दोनों अलग अलग नहीं बताना, इकट्ठे ही बता देना, आप चाहो तो अलग अलग ही बता सकते हो। कि तीव्र कसाय ने लिखा कि मंद कसाय ने? जल्दी मत करो, सोचने दो सबको, ऐसे उछलते क्यों? क्यों सबने सुना मेरा प्रश्न कि जब वे शास्त्र लिख रहे थे तब उन्हें तीव्र कसाय थी कि मंद कसाय? जब वे प्रवचन कर रहे थे उन्हें तीव्र कसाय थी कि मंद कसाय? जब वे आहार कर रहे थे उन्हें तीव्र कसाय थी कि मंद कसाय? ये सब मैं जानना चाहता हूं। एक आदमी बोला जिसे मुझे कुछ बोलने का मौका मिले, ये कह रहे मंद है। अब देखो समझो उस तर्क को कि उनके तीन कसाय तो है ही नहीं, अनंतानबंदी प्रत्याख्यान वाला प्रत्याख्यान है ना, अब एक संतुलन कसाय रही, और साथ में गुणस्थान की परिभाषा क्या है गोमठ सार में? संजोलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा हो दी, कि जब संजोलन और नो कसाय है ना, जो होती है ना आठवें गुणस्थान तक नौवें गुणस्थान तक, इनका उदय मंद होता है तब सातवां गुणस्थान होता है, और इसके लिए उसे अप्रमत्त कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इनका उदय तीव्र होता है तब छठवां गुणस्थान होता है। अब ये सब छठवें गुणस्थान के काम है, आहार विहार उपदेश शास्त्र लिखना समझाना, ये सब है कौन से गुणस्थान के काम है, छठवें में ही होते हैं ना। तो वो संजुलन कसाय का तीव्र उदय होता है उस समय, और तीन कसाय तो है ही नहीं, अब जो है उसी में मंद तीव्र लगेगा ना। अब किसी से कहो कि कुंद कुंद को तीव्र कसाय थी नहीं तो समय सा नहीं लिखा जाता, तो गला पकड़ लेगा आपका। छठ में वाले शुद्धो वियोग तो उनके है ही नहीं, तो कसाय भी तीव्र है, पर पांचवें वाले के शुद्धो वियोग भी हो सकता है और मंद कसाय भी हो सकती है, और चौथे वाले के भी शुद्धोपयोग हो सकता है और मंद कसाय हो सकती है, लेकिन छठवें वाले के ना मंद कसाय होती है ना शुद्धोपयोग। ठीक, आप समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि छठवें और सातवां जो गुणस्थान बनाया ना उन्हें वर्गीकरण किया, तो शुद्धोपयोग का अलग गुणस्थान बना दिया और शुभोपयोग का अलग बना दिया, और पांचवें में तो वे दोनों ही, शुद्धोपयोग का काल भी उसी में है और शुभोपयोग का काल भी उसी में है, ऐसे चौथे गुणस्थान का भी तो हो सकता है ना, समझ गए आप? वो दो गुणस्थान रखे ही नहीं, यहां भी दो रख सकते थे, पांचवें के भी दो को टुकड़े कर सकते थे, चौथे के भी नहीं किए आचार्य ने। तो अब ये बात हो गई क्या कि छठवां गुणस्थान शुद्धोपयोग का नहीं है, शुद्धोपयोग होता नहीं, वो कसाय तीव्र होती है, और पांचवें में कसाय भी मंद हो सकती है और सातवां गुणस्थान भी हो सकता है, मतलब शुद्धोपयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो निर्जरा किसके ज्यादा होगी? मैं कुछ निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहता हूं आपको, तो फिर तो शुद्धोपयोग जिसमें होता है और कसाय मंद होती उसी की होगी। जो शुद्धोपयोग से मानते हैं उनका भी हो गया, और जो मंद कसाय से निद्रा मानते हैं उनका भी हो गया। अब वहां मंद कसाय भी नहीं है, शुद्धोपयोग भी नहीं है, तो उनकी तो निद्रा होगी ही नहीं। क्यों, समझ में आ रही है बात कि नहीं? लेकिन वो जो 11 स्थान है कौन से, असंग गुणी निद्रा वाले, तो सम्यक दृष्टि श्रावक वृता अनंत वियोजक है ना, आता है ना उसमें कि सम्यक दृष्टि से श्रावक का, श्रावक से अनंतानबंदी का विषय योजन करने वाला, फिर वहां पर छठवा गुणस्थान का नंबर आता है बाद में, तो उसकी अधिक निद्रा होती है। अब तीव्र कसाय सुनना पशुपयोग का काल, तो उसके निद्रा ज्यादा हो गई। और इनके आप समझ गए ना, और अब और समझो और कठिन परीक्षा कि जब पंचम गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग में है और मंद कसाय में है, उस काल से भी ज्यादा होती इसकी। अरे तुम कहोगे तो शुभ क्या नहीं है, तो शुभ से शुभ का ऐसा नहीं गुणनफल, क्या बहुनी समझ में आ रही बात क्या नहीं है? कमल समझ में आ गई कि नहीं? अरे समझे, समझाने वालों की समझ में आ जाए तो मेरा काम होता है। समझ गए कैसे होगा? इससे एक तथ्य सिद्ध होता है, मैंने बहुत पुराने ये निकाला है निष्कर्ष, कि उसके तीन कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है वो निर्जरा का नियम परिणति से है, उपयोग से नहीं। अपन छठवें गुणस्थान को ऐसा हे करके देखते हैं, बिचका बिचका के शुभोपयोग बिचका बिचका के देखते हैं। अरे भाई उसके तीन कसाय के अभाव रूप 24 घंटा परिणति विद्वान है, और जो तुम्हारी बंद विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति सत्य विच्छुत्ति जो उम्र सार में है वो सब उस परिणति के हिसाब से है, उपयोग के हिसाब से नहीं है। क्यों? क्यों यही लिखा ना कि इन कर्म की प्रकृतियां इस गुणस्थान में विच्छुत्ति हो गई। अब उस गुणस्थान में सुबह सुबह दोनों ही होती हैं, तब भी विच्छुत्ति हो गई ना। ऐसा तो नहीं कि शुभ हो तो विच्छुत्ति, अशुभ हो तो नहीं हो, शुद्ध हो तो विच्छुत्ति हुई, तो दोनों होंगी ना, तो परिणति के हिसाब से हुआ ना ये नियम। ये उपयोग जो क्षणिक है उसके हिसाब से क्या नियम बना, जो कुछ स्थायी है उसके हिसाब से नियम बनाए ना। हम उपयोग शुभ उपयोग बंद का कारण, शुद्ध उपयोग विद्या हिसाब का कारण मान अबंध का कारण, और अशुभ पाप बंद का कारण, बताइए परिणति को कोई पूछता ही नहीं। ये इनकम टैक्स जैसा खतरनाक काम है, ये इनकम टैक्स कैसा कि तुम्हारी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। अब हमारे पास 100 गुनी और इनकम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी भ्रमणों में पड़ी है, उसमें पड़ी है सोना पड़ा जमीन में गड़ा हुआ है, और हमें कोई नौकरी नहीं करते, धंधा नहीं करते, व्यापार नहीं करते है? लगा दिया 10-25 लाख 50 करोड़ रुपया बैंक में डाल दिया, उसका ब्याज आता है, उससे खर्चा चलता है, और वो इतना होता है ब्याज कि वो इनकम टैक्स की रेंज में ही नहीं आता। वो छूटते 3 लाख 5 लाख कितने छूटते भैया, कहां तक नहीं लगता आजकल टैक्स? जो भी हम बुढ़ों को कुछ ज्यादा है 5 लाख, अब 5 लाख तक की इनकम में हमारा खर्चा चलता है आसानी से, और तब तक हमें टैक्स नहीं लगता। अब हमारे भी अरबों पड़े क्यों, हमें टैक्स नहीं लगता, और तुम्हारा जरा बड़े और कुछ नहीं है, किराए के मकान में रहते हो क्यों, न कुछ संपत्ति है, न मकान है, न जायदाद है, न सोना है, न चांदी है, न हीरा है, तुम्हें ज्यादा इनकम के हिसाब से टैक्स लगाए ना, और प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाए तो हम मर जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। होता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए समाज में जब झगड़ा होता है ना कि साहब मंदिर बनाना है, बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, तो ऐसा करो कि जितनी जिसकी इनकम है वो 5% इनकम देगा। कौन लगाता है प्रस्ताव? जो धंधा पानी नहीं करता है, समाज की नेतागिरी करता है, समझे ना, वो ऐसा लगता है इनकम पर टैक्स लगा दो। जिस बेचारे को जो भी करता है ना इनकम है, कहता ना इनकम पे क्यों लगा दे, प्रॉपर्टी पे लगा दो ना। कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो उसके 5% दे दे, तो इनकम पे तो जब इनकम होगी तब 5% मिलेगा, सुनना। और प्रॉपर्टी पे आज 5% लगा दो तो कल मंदिर खड़ा हो जाएगा, समझ में आई ना। तो प्रॉपर्टी जितनी है ना उसे 5% लगा दो तो होगा या काम के नहीं, नहीं प्रॉपर्टी पर नहीं लग सकता, इनकम पे लगेगा। तो तीसरा कहता है ना इनकम पे लगाओ ना प्रॉपर्टी सेल पे लगा दो। क्यों? अब हमने दुकानें नहीं खोली तो हमारी कोई सेल होती ही नहीं। खूब इनकम है, खूब प्रॉपर्टी है, ब्याज आता है, क्यों किराया आता है, बाजार भाव बढ़ रहे हैं सोने के सबके, खूब इनकम है, खूब प्रॉपर्टी है, और सेल कुछ है ही नहीं, हमें टैक्स लगेगा ही नहीं। तो 3,000 का है, सेल पे लगाए, प्रॉपर्टी पे लगाए या इनकम पे लगाए, बोलो। और गवर्नमेंट वो बहुत होशियार है, प्रॉपर्टी पे भी, सेल पे भी, इनकम पे भी, सब पे लगाए। इनकम टैक्स केंद्रीय गवर्नमेंट का, प्रांतीय गवर्नमेंट का, वो उसको इनकम, ये उसकी इनकम। तो म्यूनिसिपैलिटी कहती हम क्या करें, तुम लगा दो चुंगी। क्या करो, अरे ऐसा है। तो इस पर तुम विवेक से चाहे कर्णानियों को चाहे इसका स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक कलश रह गया इसका जो बनारसीदास का पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इसमें कोई दम नहीं है। देखो सुनो, इस पे बनारसी दास ने 21 कलश लिखे। कितने लिखे? माथा चकरा जाए, उनका तो मन बस रंगरम था, मन रंग गया तो 21 लिख दिया। और चौथी पहली गाथा से 12वीं गाथा तक एक नहीं लिखा, अम्बचंद ने भी लिखा। 12वीं गाथा के बाद चौथा कलश आता, 3 मंगलाचरण के कलश। पहली गाथा के बाद 3 ठोक दे और दूसरे के बाद बिल्कुल नहीं। इसमें 21 छंद लिखे। अब 21 तो मैं इसमें दे नहीं सकता था अनुशीलन में भी, तो बस ये काय के बस उनके बस बैराग के संबंध में, बैराग बैराग की बात लिखी थी उनने, बस जो उनके दिमाग में आई। तो बस एक छंद है, बस बैराग का है, उसमें कुछ अर्थ करने का ज्यादा है नहीं है। तो अपन थोड़ा सा उल्लंघन करके पढ़ लेते हैं, पढ़ो भाई।
जसते यह संपदा हमारी सो तो साधुनी अडारी, ऐसे जैसे नाक सिन की ताही तो कहते आही, पुत्र जोग पाई सो तो नरक की साई है बड़ाई, डेढ़ दिन की घेरा माही पर तो उचारे सुख आखन को माखन के चूटत मिठाई, जैसे भिन्न की इते परी होई ना हो दासी जगवासी जी, जग में असाता है न साता एक छिन्न की।
है ना, बस वैराग्य का वर्ष है, इसमें तत्व की बात कुछ नहीं है, बस ऐसे ही 21 है। ये नमूने के लिए मैंने रखा है इसका। देखो, जासो तू कहते है हमारी संपदा है, जिसको तू अपनी संपत्ति मानता है, ये रुपया पैसा मकान जायदाद है ना, वो ये कहते हैं कि भैया ये तो ऐसा काम है कि जैसा एक बालक हो और उसको बार बार नाक आती है तो नाक को छिनक देना चाहिए ना, तो वो छिनकता नहीं है, सिनक लेता। जैसे बच्चे जैसे नाक सिनकी, समझ में आया ना। हमारे बचपन में भी बहुत जुकाम हो जाता था और बहुत ऐसी नाक आती थी, कई दफे छनकते थे फिर भी वह ऐसा भी हो ही जाता था। तो लोग कहते थे भाई छनक दो, भगवान और दे। तो व्यंग करते थे, मजाक उड़ाते थे। क्या ये संपत्ति ऐसी है, इसको जोड़ना कि जो ये गंदगी है उसको निकाल फेंकना चाहिए थी, पर तू उसको संभालता है। संपत्ति के लिए लिखा है, जैसे तू नाक को छिनकता है, छिनकता है जो छिनकने की चीज थी उसको तू छिनकता है। अरे बस छिनक नहीं होगा पंडित जी, छिनकी होगा, ये गलती छपक गया है। तो कोई बात नहीं है, छिनकी सही, हमारा बाप का क्या बिगड़ता है, तो कहते ये संपत्ति तो छिनकी हुई नाक जैसी है। कोई नहीं, नीचे लिखा है इसमें, देख लेना है ना, छिनकी लगा लो चाहे छिनकी लगा लो, है ना। लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक है, समझ आया दुनिया है, इज्जत नाक माने इज्जत भी होता है, सबसे बड़े हैं नाक अपना होती ना ऊंची, ऊंची सबसे ऊंचे स्थान पर है ना। लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक है, और मैं भी कहता हूं कि बेशहर की नाक है पर छिनकी हुई। शहर ने अभी देख दिया है, मैंने कहा आया समझ। लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक है, मैं भी कहता हूं कि बेशहर की नाक है पर छिनकी हुई। ये तो निपट गया ना, छिनकी छिनकी। ताही तू कहत पुण्य योग पाई, सो तो नरक की साई है बढ़ाई डेढ़ दिन की। तू कहता हमने पुण्य के उदय से पाया, कोई जबरदस्ती बसी थोड़ी मिल गई, हमारे पुण्य का उदय है इसलिए हमें मिली, हमारे पुण्य के उदय से पाई है। तो वो कहते ये तो तूने नरक की साई ली। साई लेना समझते हो, पुराने जमाने में कोई धंधा तो होता था ना, कि हमने आपका मकान खरीदा तो वो ले भैया 5,000 रूपया ले लो एडवांस से बोलते हैं। इस बात के प्रतीक थे वो कि हमने सौदा पक्का कर दिया है, अब फिर बाद में हम पूरे चुका देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे, वो मकान ले लेंगे, उसको बोलते थे साई, साई देना, समझे ना। जब हम बच्चों का संबंध करते थे उसे बोलते थे सगाई, और जब हम धंधा मकान जायदाद का करते थे तो उसे बोलते थे साई, है ना। और एक कहते हैं कि साई ने ये दी तो हमने नरक जाने का सौदा पक्का कर लिया है, अब जल्दी नहीं है, चले जाएंगे, दवाई पूरी हो जाएगी मनुष्य भव की, लेकिन नक्की हो गया कि हमें कहां जाना, रिजर्वेशन हो गया। नरक की साई और बड़ाई डेढ़ दिन की, ये डेढ़ दिन तुम्हारी इज्जत है दुनिया में, बड़ाई बड़ाई लोग करेंगे क्यों, लेकिन नरक की साई है। अभी कोई आगम के आधार पर लिखे ना, भगवारम्भ परिग्रस्त नरक साई सा लिखा के नहीं लिखा, तत्वासूत्र में लिखा है, उसी को उन्होंने इसमें कहा, कोई निंदा थोड़ी करी है। घेरा माही पर्यो तू बिचारे सुख आखनी को, माखन की चूटत मिठाई जैसे भिन्ने की। आंख देख देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आखन का सुख वो बना जमे मना जी एक छंद बोलते थे ना, नयन सुखम को निवा रहे थी है पूरा, मुझे तो इतना नहीं आ रहा, नहीं किसी को नहीं है, और जिनने सुने ही नहीं है उन्हें क्या होगी कि नयन सुखम को निवा रहे थी, वो तो बहुत अश्लील छंद है। वो जगन मोहन लाल जी सुनाते थे कि वो ये कहते थे कि जगत में इतनी महिलाएं हैं, एक एक से खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, श्रृंगार करती हैं, तो उनके तुम बहुत क्यों इतने क्यों लोलपी हो रहे हो, क्या है क्या क्या क्या, क्या? तुम्हें क्या मतलब, वो जिसकी है वो उसकी है। तो वो कहते थे नयन सुखम को निभा रही थी। समझ में आई ना, कि मैं आंख से देख के आनंद लूंगा, मजा लूंगा, उसे कौन दुनिया की ताकत रोक सकती है। वो पूरा छंद बोलते थे, वो अंतिम पंक्ति मुझे याद है कि नयन सुखम को निवा रहे थी, कि नयन सुख मैं देखने का जो आनंद है वो मैं लूंगा, उसे दुनिया की कौन सी ताकत मुझसे छीन सकती है, वो और मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन नयन सुख को, वही बात लिखा है, बिचारे सुख आसन को, अब समझ नहीं आए नयन सुखम, लेकिन ये है कैसा, माखन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी, हलवाई की मिठाई दुकान की मिकाई जिस पर कोई ऊपर से कांच मांस नहीं लगा है, बिल्कुल खुली है, और मक्खियां जिसपे भिनक रही हैं, ऐसी माखन, माखन माने मक्खियों से की खा रही हैं मक्खियां चोट चोट के खा जा रही उन्हें मिठाई को, माखन की चूटत मिठाई जैसे भिनकी, ये संपत्ति है। लोग जैसे मक्खियां ले जाती हैं तो कोई इनकम टैक्स वाला ले जाता है, सेल टैक्स वाला ले जाता है, फिर कोई पंडित आ जाता है संजय के नाम पे ले जाता है, ऐसे चोट चोट की तरह ले जाते हैं ना, जैसे मक्खियां चोट चोट के ले जाती है ना उसमें से बिना ही कुछ पैसा दिए। ये तेरी संपत्ति कैसी है ना, माखन के चूटत मक्खियां चेंट जाएं, चूटत माने चेंट जाएं, ऐसे मिठाई जैसे भिनकी हुई मिठाई जैसी है तेरी ये संपदा। एते पर होय ना उदासी जगवासी जीव, ऐसी स्थिति है फिर भी ये जगत के जीवों को उससे उदासी नहीं होती है। जगत में असाता है न साता एक छिनकी, इस जगत में असाता 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 ही ज्यादा है, एक छिनकी भी एक क्षण की भी साता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि सारा जगत इस जगत में कैसे रीझ रहा है और वो अपने आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करता है। चलो अगली 81 गाथा चलेगी कल।